बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। शिया ऑडियो की जानिब से किताब 50 मौजूआत पर 100 वाक़यात ऑडियो शक्ल में आपके सामने पेश की जा रही है। ये किताब 372 सफ़ात पर मुश्तमिल है। किताब 50 मौजूआत पर 100 वाक़यात, हर मौजू के ज़ेल में 5 आयात, 5 रिवायात, 2 वाक़यात शामिल हैं। मुश्किसात किताब, इसमें किताब 50 मौजूआत पर 100 वाक़यात। तालीफ मौलाना सैयद अली अफजल जैदी कुम्मी, नज़रसानी मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी, तसही हाफिज खुदा बख्श सैयद जुल्फ़िकार हुसैन नकवी, कंपोजिंग मुबारक हसनैन जैदी, नाशिर बाबुल इल्म दारुल तहकीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। 50 मौजूआत पर 100 वाक़यात। इंतसाब, मैं अपनी इस काविश को वक्त के इमाम अलैहिस्सलाम यानी इमाम साहिबुल असर व ज़मान अलैहिस्सलाम के, जिनकी मारिफत हासिल करना हर एक पर वाजिब है, की मलुकूती बारगाह में हदिया करता हूँ। दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम बंदे की इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का हकीकी सिपाही बनने की तौफीक अता फरमाए और जुमला मोमिनीन मोमिनात की शरई हाजात को मुस्तजाब फरमाए और हम सबको अमाल सौले बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहक़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़िता, हम तो जिनके हैं शेदा जल्द आने वाले हैं, सू बसू है ये चर्चा जल्द आने वाले हैं, इंतज़ार जिनका है हम फिदाई जिनके हैं, वो हुसैन अलैहिस्सलाम के शहदा जल्द आने वाले हैं। बयाने मौलिफ नाचीज राकिम अतरूफ, हमने इस किताब से पहले एक और किताब इंसान सास वाक़यात तहरीर की थी, जो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लोगों ने पसंद की, लेकिन तमन्ना और आरजू ये थी कि वाक़यात को मौजू के साथ तहरीर किया जाए और आयात और रिवायात को भी जिक्र किया जाए। इस किताब को लिखने से पहले जनाब हसन अली जिवानी साहब से मशवरा किया तो उन्होंने फरमाया कि आजकल लोग वाक़यात की किताबें बहुत ख़रीदते हैं और वाक़यात को पढ़ने में काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। गोया उन्होंने मेरी ख्वाहिश और आरजू की तायद फरमाई, इसलिए पाकिस्तान से ईरान वापसी पर बंदे ने इस किताब को लिखना शुरू किया। इस किताब में 50 मुख्तलिफ मौजूआत हैं और हर मौजू में 5 आयात, 5 रिवायात को जिक्र किया गया है और मुख्तसर सी तशरीह तौज़ी भी बयान की गई है और हर मौजू पर 2 वाक़यात का भी जिक्र किया गया है। खसूसन अहले मिंबर के लिए ये किताब काफ़ी मुफीद साबित होगी। कोशिश की गई है कि ऐसे मौजूआत को बयान किया जाए कि जिनको पढ़कर हम अपनी इस्लाह कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, किताब इंसान साज वाक़यात और इसरार विलायत के बाद ये तीसरी काविश है जो इस वक्त कारीन कराम के हाथों में मौजूद है। इस काविश को पाए तकमील तक पहुंचाने में जिन अफराद ने हिस्सा लिया है उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जैसे मौलाना मुबारक हुसनैन जैदी साहब के, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इसकी कंपोजिंग की, इसी तरह मौलाना नादिर सादिकी, मौलाना सैयद नासिर हुसैन जैदी, मौलाना ज़ीशान हैदर नकवी, मौलाना रिजवान अली अलवी, मौलाना शुजात अली हिंदी, जनाब हाफिज खुदा बख्श, जनाब सैयद जुल्फ़िकार हुसैन नकवी साहिबान के, जिन्होंने 10-10 मौजूआत को लेकर तसहीह का काम अंजाम दिया। इसी तरह तमाम साथियों का ममनून हूँ जिन्होंने इस काविश को शाया करने में मेरे साथ तावुन किया, बिलखसूस नज़रसानी और तबात के मराहिल में आनत करने वाले मेरे अजीज दोस्त मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी और मौलाना मेहदी ईमानी का शुक्रगुजार हूँ। खुदा से दुआ गो हूँ भक्के मोहम्मद व आले मोहम्मद, जिन अफराद ने जिस तरह कभी इस किताब में तावुन किया है, भक्के मोहम्मद व आले मोहम्मद इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, इसी तरह कार्य खैर करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए और हम सबके मरहूमीन की मगफिरत फरमाए, हमारा हश्र नश्र कुरान व अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सैयद अली अफजल जैदी। عرضِ ناشر باب العلم دار التحقیق اہل علم و قلم و تحقیق کے ایک ایسا زمینہ ہے جس کے ذریعے وہ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم و ملت کے شعور اور دین سوچ میں اضافہ کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اب تک 20 سے زیادہ کتابوں کی تالیف اور سینکڑوں سوالات کے جوابات اسی ادارے سے نشر کیے گئے ہیں۔ علماء قم و نجف حتی پاکستان میں مقیم اہل قلم کو دعوت تحقیق دیتے ہوئے امید کرتے ہیں کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون اور اس کے لیے خیرخواہ رہیں گے۔ مولانا سید علی افضل زیدی قم کے پاک دل اور مخلص علماء کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ کی بیشتر تالیف کے علاوہ درست و تالیف 50 موضوعات پر 100 واقعات ہے، جس کی تصحیح جناب حافظ خدا بخش اور جناب ذوالفقار حسین نقوی نے کی، جبکہ کمپوزنگ جناب مبارک حسنین زیدی اور مرزا محمد علی صاحب نے انجام دی، اور باب العلم دار التحقیق اسے پیش کر رہا ہے۔ یہ کتاب کیونکہ 50 اخلاقی، سماجی اور گھریلو مسائل پر مشتمل مختلف موضوعات پر مرتب کی گئی ہے، جو کہ مبلغین، مقررین اور مدرسین کے علاوہ تمام اہل مطالعہ افراد کے لیے مفید ثابت ہوگی، جس میں مولانا نے ہر موضوع پر 5 آیات اور ان کی مختصر تفسیر، 5 روایات اور ہر موضوع پر 2 واقعات ذکر کیے ہیں۔ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ مولانا شاید شہنشاہ حسین نقوی، سربراہ باب العلم دار التحقیق کراچی۔ نمبر 1 آخرت۔ آیات نمبر 1 تمام مر جائیں گے، سورہ زمر آیت نمبر 30، ترجمہ۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب مر جانے والے ہیں۔ نمبر 2 موت مخلوق خداوند، سورہ ملک آیت نمبر 2، ترجمہ۔ اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ نمبر 3 موت سے ڈرنے کی وجہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 94-95، ترجمہ۔ ان سے کہو کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ نمبر 4 موت کے بعد زندگی، سورہ روم آیت نمبر 50۔ اب تم رحمت خدا کے ان آثار کو دیکھو کہ وہ کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے، بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر 5 آخرت بہتر ہے، سورہ آلہ آیت نمبر 17، ترجمہ۔ آخرت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ روایات نمبر 1 آخرت کے لیے عمل انجام دو، غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 17۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، اسی کے لیے عمل انجام دو۔ نمبر 2 آخرت نیک لوگوں کے لیے ہے، غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، آخرت نیک لوگوں کی کامیابی ہے۔ نمبر 3 دنیا کی زینت، غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 16۔ حضرت ام المومنین علیہ السلام نے فرمایا، مال اور اولاد دنیا کی زینت ہے اور نیک عمل آخرت کی کھیتی ہے۔ نمبر 4 آخرت پر یقین، غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 19۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ دنیا کی حرص نہیں کرتا۔ نمبر 5 آخرت باقی رہنے والی ہے، غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18۔ تشریح، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کو دوام نہیں۔ قرآن و روایات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، یہ دنیا فقط ایک گزرگاہ ہے، انسان کو ہمیشہ آخرت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ آج عمل کا دن ہے اور کل حساب کا، جزا و سزا کا دار و مدار عمل پر ہے، جیسا عمل ویسی ہی جزا و سزا۔ مندرجہ بالا آیات و روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے कि दुनिया से बेहतर आखिरत है। खुदा से दुआ है बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम हमें आखरत में बेहतरीन जजाओ पादाश अता फरमाए और हमें आखरत को याद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाकयात नंबर एक, नादान आबिद। बनी इसराइल में एक मुत्तकी व परहेजगार आबिद 200 साल अपनी उम्र इबादत इलाही में गुजार चुका था। इसने खुदा से दुआ की कि खुदाया इबलीस को दिखा, अचानक इसके करीब एक बूढ़ा शख्स जाहिर हुआ। आबिद ने पूछा, तुम कौन हो? बूढ़े ने कहा, मैं इबलीस हूँ। आबिद, तुम मेरे पास इससे पहले क्यों नहीं आए? मुझे फरेब देने के लिए। इबलीस ने कहा, कई बार आया लेकिन तुम मेरे जाल में ना फंस सके। आबिद, क्यों? इबलीस, क्योंकि तुम हमेशा इबादत इलाही में मशगूल रहते और हमेशा इस फिक्र में रहते कहीं इसराइल ना आ जाए और मैं गुनाहों मासियत में मुब्तला हूँ। इस वजह से मैं तुम पर मुसल्लत ना हो सका और इसी वजह से खुदा ने तुम्हारी 200 साल उम्र की और मजीद तुम्हारी 200 साल की बढ़ा दी है। गोया तुम्हारी उम्र 400 साल है। ये कहकर इबलीस गायब हो गया। आबिद सोचने लगा और अपने आप से कहने लगा कि 200 साल मेरी उम्र अभी बाकी है, क्यों अपने आप को दुनियावी लज्जत से महरूम रखूं? गोया आबिद आखरत को भूल गया। 100 साल ऐशो इशरत में गुजारता हूं और बाकी 100 साल इबादत व अतात में गुजार दूंगा। इस गलत फिक्र ने आबिद को इबादत से दूर कर दिया और दुनिया की तरफ मुतवज्जा हुआ। आहिस्ता आहिस्ता गुनाह का मुर्तकिब होता रहा। एक दफ़ा अचानक इसने महसूस किया कि मलकुल मौत इसराइल इसके करीब आ रहा है। आबिद ने इसराइल से कहा, मेरी 200 साल उम्र है। इसराइल ने कहा, बेशक तुम्हारी उम्र 200 साल थी लेकिन इबादत की दूरी और गुनाहों की अंजामदही की वजह से तुम्हारी उम्र कम हो गई। तुम आखरत को भूल गए और दुनिया की तरफ मुतवज्जा हो गए। इस तरह नादान आबिद की आकबत से आखरत खराब हो गई। तर्जुमा, खुदाया हमारी आकबत बखैर फरमा। आकबत व कैफर गुनाहगारान, सफ़ा नंबर 15। नंबर दो, हकीकत को जानना। एक शख्स मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, ए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, मुझे कुरान की तालीम दें। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम ने अपने असहाब में से इसको एक सहाबी के सुपुर्द किया। सहाबी इसका हाथ पकड़कर मस्जिद के एक कोने में ले गया और सूरह मुबारका जिलजलाल की इसके सामने तिलावत की। जब इस आयत पर पहुंचा, फमन यामल मिसकाला जर्रता खैरन यरा वमन यामल मिसकाला जर्रतिन शर्रन यरा, फिर जिस शख्स ने जर्रा बराबर नेकी की है वही इसे देखेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की है वो इसे देखेगा। इस शख्स ने थोड़ी फिक्र करने के बाद कहा, क्या ये जुमला वही इलाही है? सहाबी ने इस शख्स के जवाब में कहा, बेशक। इस शख्स ने कहा, मैंने इस आयत से दर्स ले लिया है, यानी यही आयत मेरे राह मुस्तकीम पर चलने और आखिरत की याद के लिए काफ़ी है। और ये कहकर वो चल पड़ा। सहाबी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और सारा वाकया बयान किया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको आज़ाद छोड़ दो, इसने हकीकत को पा लिया। तफसीर नमूना जिल्द नंबर 27 सफ़ा नंबर 231। नंबर दो, एहसान। आयात नंबर एक, एहसान के लिए हुक्म इलाही। सूरह नहल आयत नंबर 90। तर्जुमा, बेशक अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है। नंबर दो, एहसान का बदला। सूरह रहमान आयत नंबर 60। तर्जुमा, क्या एहसान का बदला एहसान के अलावा कुछ और भी हो सकता है? नंबर तीन, नेकी का शौक दिलाना। सूरह ज़मर आयत नंबर 10। तर्जुमा, जिन लोगों ने इस दुनिया में एहसान किया इनके लिए नेकी है। नंबर चार, रहमत इलाही एहसान करने वालों के करीब है। सूरह एराफ आयत नंबर 56। तर्जुमा, इसकी रहमत साहिबान हुस्न अमल से करीब तर है। नंबर पाँच, खुदा एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 148। तर्जुमा, और अल्लाह नेक अमल करने वालों को दोस्त रखता है। रिवायात नंबर एक, नेक लोगों की खसलत तकरुरुल हुकुम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 269। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एहसान करना नेक लोगों की खसलत है। नंबर 2 बेहतरीन ईमान, करूरुल हुकुम जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 271। मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन ईमान एहसान है। नंबर 3 एहसान मोहब्बत का सबब, करूरुल हुकुम जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 275। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एहसान मोहब्बत का सबब होता है। नंबर 4 गुनहगार और पर एहसान, करूरुल हुकुम जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 277। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गुनहगार पर एहसान बेहतरीन फजीलत है। नंबर 5 ग़ुलामी, करूरुल हुकुम जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 280। मौलाए मुत्तकियान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एहसान से इंसान ग़ुलाम बन जाता है। तशरी, एहसान हर वो अमल नेक है जो वाकयन नेक हो और निगाह कुदरत में नेक कहे जाने के काबिल होता कि वो इसका अजर दे सके, वरना ख्याली नेकियों की कोई कीमत नहीं है। एक अकली कानून भी है और शरई कानून भी। साहिबान अकल भी इस हकीकत का एतराफ़ रखते हैं कि नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं हो सकता, और हुक्म शरीयत भी है, और अगर कोई शख्स तुम्हारे साथ नेक बर्ताव करे तो इसकी नेकी का जवाब नेकी ही से दो। अगरचा बदसरश्त अफराद ने इन कानून का भी ख्याल नहीं रखा और परवरदिगार जैसे एहसान करने वालों के साथ भी अच्छा बर्ताव नहीं किया और इसकी बंदगी से किनाराकश हो गए, बल्कि इसके वजूद तक का इनकार कर दिया। खुदा से दुआ है बहक़ चौहरदा मासूमीन अलैहिस्सलाम हम सबको एहसान होने की करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाक़यात नंबर 1 एहसान और नेकी। मुअम्मर बिन खलूद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रिवायत नकल करता है कि हज़रत ने फरमाया, बनी इसराइल में एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि इसके पास कोई शख्स आया और इसने कहा, तेरी उम्र में आधी जिंदगी आराम सुकून और खुशी में गुजारेगी और आधी जिंदगी दूसरी जिंदगी परेशान और तंगदस्ती में। अब तेरी मर्जी है कि जो जिसको चाहे पहले इंतखाब कर ले। इस शख्स ने कहा, मेरे साथ मेरी शरीक हयात है, बेहतर है पहले इससे मशवरा कर लूँ। जब सुबह हुई तो इसने बीवी से कहा, रात ख्वाब में मैंने देखा एक शख्स को देखा, इसने मुझसे कहा, तेरी आधी ज़िंदगी में खुशियां हैं और आधी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, अब तेरी मर्ज़ी जिसको चाहे पहले इंतखाब कर। इसकी बीवी ने कहा, पहले खुशी को इंतखाब कर लो। इसने अपनी शरीक हयात की बात पर अमल किया और पहले खुशी को इंतखाब किया। जब इसने ये काम किया और दुनिया में इसकी तरफ आई तो जब इसे कोई नेमत मिलती तो इसकी जौजा इससे कहती, तुम्हारा फला हमसाया और पड़ोसी ज़रूरतमंदो मोहताज है, इसके साथ एहसान करो, या इससे कहती, तुम्हारा फला रिश्तेदार न्याजमंद और ज़रूरतमंद है, इसकी मदद करो। इसी तरह हमेशा जो भी इसको नेमत मिलती वो गरीबों और मोहताजों की मदद करता और इस नेमत का शुक्र अदा करता। इस तरह इसकी आधी ज़िंदगी खुशियों और फरावानी में गुजरी और जब दूसरी आधी ज़िंदगी शुरू हुई तो इसकी बीवी ने कहा, यानी खुदा ने हमें नेमत से नवाजा और हमने उसका शुक्र अदा किया और खुदा यकीनन अपने वादे पर वफा करने वाला है। यही एहसान शुक्र नेमत गरीबों मोहताजों अजीज़ व अकारिब की मदद करना सबब बना के इसकी दूसरी आधी ज़िंदगी भी खुशियों और फरावानी में गुजरी। बिहारुल अनवार जिल नंबर 77 सफ़ा नंबर 55 शरह ज़ियारत अमीनुल्ला सफ़ा नंबर 315। नंबर 2 एहसान और ख़िदमत खल्क। इब्ने अब्बास कहते हैं, मैं मस्जिदुल हराम में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के करीब बैठा था और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में एतकाफ़ में बैठे हुए थे। एक दिन इमाम अलैहिस्सलाम तवाफ़ कर रहे थे कि इतने में एक शख्स आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ की, ऐ फ़र्ज़ंदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मकरूज़ हूँ, मुझे इस कदर रकम चाहिए, अगर मुमकिन हो तो मेरा कर्ज़ अदा कर दें। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस खाने के रब की कसम, मैंने इस हाल में सुबह की है कि मेरे पास कुछ भी नहीं, इस शख्स से कहा, अगर मुमकिन हो तो मुझे साहिब कर्ज़ से वक्त लेकर दे दें, کیونکہ وہ مجھے ڈراتا اور دھمکاتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں، امام علیہ السلام نے اپنے طواف کو چھوڑا اور اس شخص کے ساتھ اس کی حاجت روائی کے لیے چل پڑے۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعتکاف میں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے اپنے والد گرامی سے سنا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی کسی مومن کی حاجت پوری کرے گا گویا اس نے 90,000 سال خدا کی عبادت کی، ایسی عبادت کے دن کو روزے سے اور راتوں کو قیام میں۔ گنجیونا معارف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 45۔ نمبر 3 اخلاص، آیات نمبر 1 خالص عبادت، سورہ بینا آیت نمبر 5، ترجمہ، اور انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خدا کی عبادت کریں اور اس عبادت کو اسی کے لیے خالص رکھیں۔ نمبر 2 سب کچھ خدا کے لیے، سورہ انعام آیت نمبر 162، ترجمہ، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ نمبر 3 شیطان سے محفوظ، سورہ ہجر آیت نمبر 39 اور 40، اور سب کو اکٹھا گمراہ کروں گا علاوہ تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے خالص بنایا۔ نمبر 4 نجات یافتہ، سورہ صافات آیت نمبر 73 اور 74، تو اب دیکھو گے کہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے ان کے نا ماننے کا انجام کیا ہوتا ہے علاوہ ان لوگوں کے جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں۔ نمبر 5 بندوں کے سوا کوئی خدا کی توصیف نہیں کر سکتا، سورہ صافات آیت نمبر 160، ترجمہ، ذات خدا پاک و منزہ ہے تمام صفات سے، مگر خدا کے مخلص بندے اس کی توصیف کریں گے۔ روایات، نمبر 1 کامیابی، غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 404، مولا کائنات علی علیہ السلام نے فرمایا، اخلاص کامیابی ہے۔ نمبر 2 عبادت کا معیار، غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اخلاص عبادت کا معیار ہے۔ نمبر 3 مقربین کی عبادت، غرور الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اخلاص مقربین کی عبادت ہے۔ نمبر 4 آزادی، غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اخلاص کا نتیجہ عذاب خدا سے خلاصی و رہائی ہے۔ نمبر 5 مراد پا لینا، غرر الحکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 408، امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے عمل و نیت میں خلوص پیدا کیا وہ اپنے مقصد و مراد کو پا گیا۔ تشریح، اخلاص اور خلوص نیت ایک بہت عظیم مسئلہ ہے جس پر قرآن مجید کی آیات اور روایات معصومین علیہ السلام میں بہت زور دیا گیا ہے۔ صرف مخلص افراد ہی کی فکر و نیت، عمل اور اخلاق قابل اہمیت ہے، اور صرف وہی لوگ اجر عظیم اور رضوان الہی کے مستحق ہوتے ہیں۔ اگر ہماری کوشش، اعمال اور اخلاقی امور غیر خدا کے لیے ہوں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور خدا کے نزدیک اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ اخلاص بہترین عمل ہے، اخلاص بہت بڑی کامیابی ہے، اخلاص عبادت کا ثمرہ ہے، اور اسی اخلاص کے ذریعے انسانوں کے اعمال بلندیوں کی طرف جاتے ہیں، اور پروردگار عالم مخلص بندوں کی دعاؤں کو بہت جلد مستجاب کرتا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں خلوص نیت سے ہر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقعات، نمبر 1 شیطان کا وعدہ اور عابد کی شکست، کتاب خلاصۃ الاخیار اور دوسری معتبر کتابوں میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک درخت تھا جس میں سے شیطان آواز نکال کر لوگوں سے باتیں کیا کرتا تھا، اور کافی لوگ اس درخت کے بارے میں الوہیت کے قائل ہو گئے تھے۔ ایک عابد کو جب اس ماجرے کے بارے میں پتہ چلا تو خلوص نیت سے اس درخت کو کاٹنے کا ارادہ کیا۔ بس اس عابد نے کلہاڑی اٹھائی اور اس درخت کے قریب آیا کہ اس کو کاٹ دے، اچانک شیطان انسانی صورت میں مجسم ہوا اور عابد کو درخت کاٹنے سے منع کیا۔ मगर आबिद ने कहा, मैं ज़रूर इस दरख्त को काटूंगा। आपस में झगड़ा हुआ और आबिद शैतान पर गालिब आ गया और शैतान को ज़मीन पर गिरा दिया। शैतान ने जब देखा कि आबिद अपने इरादे से मुनहरिफ नहीं हो रहा है, तो इसने आबिद से कहा, अगर इस दरख्त को काटने से तुम्हारा मकसूद सवाब है, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा फेल अंजाम देता हूँ जिसका सवाब और अजर इससे बेहतर है। आबिद ने कहा, वो कौन सा अमल है? शैतान ने कहा, जब तक तुम जिंदा हो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे मुसल्ले के नीचे से तुम्हें हर रोज़ 2 दिनार सोने के मिलेंगे और तुम वो दिनार फुकरा में तकसीम कर देना। आबिद बेचारा शैतान के फरेब में आ गया और दरख्त को काटने से मुनहरिफ हो गया। शैतान ने चंद दिनों तक तो अपने वादे पर अमल किया, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आबिद को मुसल्ले के नीचे से दिनार ना मिले, तो दोबारा दरख्त को काटने के लिए चल पड़ा। शैतान फिर आबिद के रास्ते में आया और दरख्त काटने से रोका, लेकिन आबिद ने इनकार किया। दोनों में दोबारा झगड़ा हुआ। इस दफ़ा शैतान ने आबिद पर गलबा पाया और आबिद को जेर कर दिया। आबिद ने ताज्जुब किया और शैतान से सवाल किया कि क्या वजह है? उस दफ़ा मैं गालिब आया था और इस दफ़ा तू गालिब हुआ। शैतान ने कहा, उस दफ़ा तेरी नीयत खालिस थी और अल्लाह ताला के लिए तू काम अंजाम देना चाहता था, लेकिन इस दफ़ा तेरी नीयत खालिस न थी, बल्कि दिनार न मिलने की वजह से तू ये काम अंजाम देना चाहता था। खजीनतुल जवाहिर फी एनतुल मनाबिर, जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 1012। नंबर 2, इखलास की बका। शेख अब्बासी कुम्मी कुत्सु सरा ने सफीनतुल बिहार की जिल्द नंबर 2, सफ़ा नंबर 228, लफ्ज़ खलिस में शेख शरीफुद्दीन बिन मोनिस की किताब मुख्तसुल आहियार से नकल किया है कि उन्होंने इखलास के बाब में तहरीर किया है, जो भी अपने अमल को खलुस नियत से अल्लाह के लिए अंजाम देगा, अगरचे नियत ना हो, तो इसके असार और बरकात इसके लिए और इसी तरह इसके लवाहिकीन और पसमानदगान के लिए रोज़े क़यामत तक बाकी और कायम रहेंगे। जैसा कि नकल करते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, तो ज़मीन पर रहने वाले मुख्तलिफ़ हैवानात इनकी ज़ियारत और सलाम के लिए हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम ने आने वाले जानवरों को इनकी हैसियत और मंजिलत के मुताबिक दुआ फरमाई। हिरनों का एक दस्ता आदम अलैहिस्सलाम के सलाम के लिए इनके पास आया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकी पुश्त पर शफ़क़त से हाथ फेरा और इनके हक़ में दुआ फरमाई, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इन्हें नाफा मश्क अता फरमाया। जब ये हिरन मश्क के अमीन बन के अपनी कौम में गए, तो दूसरे हिरनों ने कहा, आज हमें तुमसे अजीब खुशबू महसूस हो रही है और आज से कबल ये खुशबू तुम में से नहीं पाई जाती थी, ये खुशबू कहाँ से लाए हो? हिरनों ने कहा, हम खुदा के बरगजीदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए गए थे, इन्होंने हमारी पुश्त पर दस्त शफ़क़त फेरा और हमारे हक में दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने हमें नाफ़ा मश्क का हामिल बना दिया। जब दूसरे हिरनों ने यह सुना, तो उन्होंने कहा, हम भी आदम अलैहिस्सलाम के पास नाफ़ा मश्क हासिल करने को जाते हैं। ये कहकर वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और उनको सलाम किया। हज़रत अलैहिस्सलाम ने इनकी पुश्त पर शफ़क़त का हाथ फेरा और इनके लिए दुआ फरमाई, मगर इन में वो खुशबू पैदा ना हुई। उन्होंने वापस आकर हिरनों की पहली टोली से कहा, हमने भी आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्होंने हमारी पुश्त पर दस्त शफ़क़त फेरा और दुआ भी की, मगर हमारे अंदर वो खुशबू पैदा नहीं हुई जो तुम्हारे अंदर है। तो दूसरे हिरनों ने जवाब दिया, हमारी और तुम्हारी नीयत में फ़र्क था, तुमने हमारी आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत को खलुस नियत से अंजाम नहीं दिया, बल्कि तुम्हारी नीयत ये थी कि परवरदिगार तुमको भी साहिब नाफ़े मश्क अता फरमाए, इसलिए तुम महरूम रहे और हमारी नीयत खालिस थी, लिहाजा हक़ ताला ने हमें इस खुशबू से नवाजा और ये खुशबू क़यामत तक इनकी नस्लों में बाकी और कायम रहेगी। हज़ारों दीक हिकायतुल इखलाकी, सफ़ा नंबर 208।